समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर भी और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी नमस्कार।
नमस्कार सर फिरोजी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। दिस इज शगुन चोपड़ा विद सर फिरोजी हियर एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज एंड लिसनर्स। अ वेरी हार्ट फेल्ट डेटलाइन इंडिया अवेट्स यू लिसनर्स, सो प्लीज बी विद अस फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। यस लिसनर्स, यू कैन हियर इट नाउ। Listeners, we also have reports, capsules, businesses, and we'll pay our tributes and more. All of this over the next 30 minutes. But first, we begin with the news headlines. Prime Minister Narendra Modi attends 6th BIMSTEC Summit at Bangkok in Thailand, describes the forum a vital platform for promoting global good.
प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से अलग बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के नेताओं से मुलाकात की।
Both houses of parliament adjourned, Senate budget session concludes.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। परियोजनाएं 3 राज्यों के 15 जिलों को कवर करती हैं।
आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा मनोज कुमार पासेस अवे इन मुंबई।
और ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारतीय खिलाड़ी हितेश पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंचे।
जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई देता न दशमलव भारत तो यूं चांद जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले।
Listeners, today we are paying our heartfelt condolences to legendary actor and filmmaker Manoj Kumar. He passed away in Mumbai this morning. He was 87 year old.
जी शगुन, आज एक ऐसे शख्स और अभिनेता हमारा साथ छोड़ गए हैं जिनके व्यक्तित्व और अदाकारी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने भारतीय संस्कृति और देश के गौरव को फिल्मी पर्दे पर न सिर्फ उतारा बल्कि भारत की छवि को सिनेमाई पर्दे पर जिया भी। वो अक्सर ऐसी कहानियों का हिस्सा बनते जिनसे लोग आसानी से जुड़ाव महसूस कर सके। उनकी हर फिल्म में हर दर्शक के लिए कुछ न कुछ जरूर होता। और शगुन, मनोज कुमार बेशक क्रांति जैसी फिल्म और भारत कुमार के किरदार में खूब लोकप्रिय हुए, लेकिन उनकी वे फिल्में भी काफी अहम हैं जिनमें उन्होंने महंगाई, आडंबर और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रहार किया। रोटी कपड़ा और मकान, कलयुग और रामायण, क्लर्क या शोर जैसी फिल्मों में उन्होंने ईमानदार और सादगीपूर्ण किरदार के माध्यम से देशभक्ति के अलग रंग प्रस्तुत किए।
Ah
सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती।
और शगुन हम सभी जानते हैं कि मनोज कुमार ऐसे अभिनेता थे जिनका नाम भारतीय सिनेमा में दर्ज हो चुका है, लेकिन बहुत कम श्रोता शायद ये जानते होंगे कि मनोज कुमार का असली नाम जो था वो हरि किशन गिरी गोस्वामी था। और मनोज कुमार जैसा कि अक्सर होता है जो नए अभिनेता होते हैं, संघर्षरत कलाकार होते हैं, वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में स्थापित कुछ लोगों से बहुत प्रेरित रहते हैं, इंस्पायर रहते हैं। तो बिल्कुल जी, इसी तरह मनोज कुमार, दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशल जैसे अभिनेताओं अभिनेत्रियों से काफी प्रभावित थे। और खुद उन्होंने बताया कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखी, जिस फिल्म में दिलीप कुमार के किरदार का नाम ही मनोज कुमार था। और हरि किशन गोस्वामी को वो फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने तभी तय कर लिया कि जब भी वो फिल्मों में आएंगे तो अपना नाम वो मनोज कुमार ही रखेंगे। और इस तरह हरि किशन गिरी गोस्वामी बन गए मनोज कुमार। और बात करें इनके फिल्मी सफर की, तो फिल्मी सफर शुरू हुआ 1957 में आई फिल्म फैशन में एक बहुत ही छोटे किरदार से। और इसके किरदार की खास बात ये रही कि इस किरदार को निभाते वक्त मनोज कुमार की उम्र केवल 19 साल थी, जबकि इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही बूढ़े किरदार किया, एक भिखारी का बहुत छोटा सा रोल निभाया। और उसके बाद जो सिनेमा में इतिहास उन्होंने रचा उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं।
डेफिनेटली, वेल अ सिनेमैटिक आइकॉन, दैट्स व्हाट वी कैन कॉल हिम। वेल, deeply saddened by the passing of this legendary actor. His unforgettable performances and, well, obviously, charismatic on-screen presence, well, it has left an indelible mark. Some of his other popular films, which you have also talked about, they are also Shor, Sanyasi, and Roti Kapraul Makan. And let us now hear more on his glorious journey from our correspondent.
24 जुलाई 1937 को अबोटाबाद में हरि किशन गोस्वामी के रूप में जन्मे मनोज कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1965 का वर्ष उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जब उन्होंने शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म शहीद में मुख्य किरदार निभाया।
ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे।
इसके बाद उनकी फिल्मों में देशभक्ति की गहरी भावना झलकने लगी, जिससे वे भारतीय दर्शकों के दिलों में बस गए और भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
सेनापति, जब जन्म देने वाली माँ पास ना हो ना, तब ये धरती माँ आंसू तो आंसू खून का बहना भी बंद कर देती है। अगर इस मिट्टी से फायदा पहुँचे ना, तो इसका कर्ज चुका देना।
उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी उनकी प्रसिद्ध फिल्में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को दर्शाती है।
तुम्हें वापस जाने का ख्याल कैसे आया? इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, पढ़कर यहीं रह जाते हैं, यहीं काम करते हैं।
जो लोग यहाँ आके बस जाते हैं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि उनपे सबसे पहला अधिकार उस देश का है जिसने पाल पोस के उन्हें बड़ा किया।
मनोज कुमार ने लगभग 4 दशकों के अपने लंबे करियर में भारतीय सिनेमा को अपार योगदान दिया और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 7 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उनकी विरासत को और मजबूत करते हुए 2015 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया।
प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
वेल, हिज अनडाउटेडली amazing performances, he carved a niche for himself in this film industry, and particularly I would like to talk about Purab and Pashchim here. That was really really impactful, so let's listen to that very impactful voice right now.
Jo log yahan aake bas jaate hain, wo ye kyun nahi sochte ki unpe sabse pehla adhikar us desh ka hai jisne pal pos ke unhe bada kiya. Jab ek aadmi pad likh ke yahan kaam karne lagta hai na, yahan do haath aur ek dimag bad jata hai, लेकिन वहां घट जाता है।
तुम अपने देश के लिए मुझे छोड़ दोगे?
तुम्हारे लिए अपना देश भी तो नहीं छोड़ सकता।
Well, such a beautiful, amazing, very impactful voice, right, Sir Firozi? And also, now let's talk about the dignitaries. including President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar, Prime Minister Narendra Modi, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and others, they are mourning the loss of this veteran actor of the silver screen.
सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मनोज कुमार ने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है. उन्होंने कहा कि अपने लंबे और शानदार करियर के दौरान उन्हें देशभक्ति से भरी फिल्मों के लिए जाना जाता रहा, जो भारत के योगदान और मूल्यों पर गर्व की भावना को बढ़ावा देती हैं. राष्ट्रपति ने कहा कि उनका सिनेमा राष्ट्रीय गौरव को जगाएगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. और ये हर मायने में बिल्कुल सही है शगुन की उनकी जो विरासत है वो आगे आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करेगी.
जी, दिस इज परफेक्टली ट्रू हियर. एंड हिज फिल्म्स, as we were also talking about, they echoed the patriotic fervor here, right? Patriotism. This was his defining trait, well, Sir Firozi. And he explored themes also like love for the motherland, farmer struggles and the sacrifices of the Indian freedom fighters. Well, his contributions rightly so earned him the Dada Saheb Phalke Award, which is India's highest cinematic honor. And he has something to share on this particular achievement. He shared it. Let's listen to that now.
हम फिल्म शहीद बना रहे थे, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखी.
मैं वो नौजवान नहीं जो करतार सिंह और खुदीराम बन सकता है.
तो उन्होंने मुझसे कहा मेरे नारे जय जवान जय किसान पे फिल्म बनाओ. और वो पहली नाम से जो पिक्चर डायरेक्ट हुई, नाम से जो लिखी गई वो फिल्म उपकार थी.
कौन कहता है कि मेरे बाजू कट गए हैं मां, देखो मेरे बाजू मुझे वापस मिल गए हैं.
Now let me share the message of Vice President Jagdeep Dhankar. He said, Manoj Kumar was renowned for his patriotic films and he has left an indelible mark on the cultural fabric of Bharat. Well, rightly so. He said the actor's legacy will continue to inspire the generations, as we were also talking about that.
हम फिल्म शहीद बना रहे थे, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखी.
मैं वो नौजवान नहीं जो करतार सिंह और खुद
जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम. जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम.
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के एक ऐसे प्रतीक थे जिन्हें खासतौर पर उनकी देशभक्ति के लिए याद किया जाता है, जो उनकी फिल्मों में भी झलकती थी. उन्होंने दिग्गज अभिनेता के परिवार और प्रशंसकों के साथ अपनी संवेदनाएं साझा की. और शगुन, बिल्कुल, मनोज कुमार ने अधिकांश ऐसी फिल्मों के लिए काम किया जिसमें हमारे सरोकार के रंग थे, भारत की सांस्कृतिक विविधता थी और कहीं न कहीं माटी की सौंधी सुगंध भी थी. आज भले ही मनोज कुमार हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे सांस्कृतिक सिनेमा की एक लंबी विरासत छोड़ गए हैं और उन्हें उनके काम, उनकी कला और देशभक्ति के प्रति उनकी भक्ति के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा.
Well, he gave us the characters that were both heroic and human.
जी बिल्कुल. परिक्रमा की पूरी टीम अभिनेता मनोज कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है.
कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है.
और श्रोताओं, अब समय है आपको लेकर चलने का देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानें कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है. जंगल में बाघ को देखने के लिए गर्मी के दिनों में जंगल सफारी करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. महाराष्ट्र में खासकर पुणे निवासी इस तरह के पर्यटन में अधिक रुचि ले रहे हैं और राज्य में स्थित जंगलों के साथ देशभर के जंगलों के बाघ देखने के लिए छुट्टियों का प्रबंधन किया जा रहा है. आइए सुनते हैं हमारे पुणे संवाददाता की ये रिपोर्ट.
महाराष्ट्र में व्याघ्र दर्शन के लिए सबसे पसंदीदा जगह है विदर्भ के चंद्रपुर जिले में स्थित ताड़ोबा व्याघ्र प्रकल्प. इस साल भी पर्यटकों ने इसी जंगल को सबसे पहले चुनकर मई महीने के आखिर तक इसके कोर तथा बफर क्षेत्र के जंगल सफारियों का आरक्षण किया है. वन विभाग ने इस जंगल में जिप्सी के माध्यम से सफारी करवाना तथा यात्रियों के निवास के लिए काफी सुविधा की है. इसके चलते देश विदेश के सैलानी गर्मियों की छुट्टी में ताड़ोबा आना पसंद कर रहे हैं. हैं। ये बात विशेष है कि गर्मियों के दिनों में लोग आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन विगत वर्षों में जंगल सफारी के बारे में काफी सारे समाचार, वीडियोस और सोशल मीडिया पर जानकारी प्रस्तुत होने से लोगों ने गर्मी सहते हुए भी जंगलों में जाने का विकल्प चुना है। इन दिनों पतझड़ के कारण ताड़ोबा जैसे घने जंगलों में बाघ को देख पाना आसान हो जाता है। विगत वर्षों में यहाँ बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ताड़ोबा के साथ साथ नागझिरा, मध्य प्रदेश के कान्हा, बांधवगढ़, रणथंबोर, पन्ना, पेंच के जंगलों के लिए भी पुणे के पर्यटकों ने बुकिंग किया है। उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व लोकप्रिय साबित हुआ है। इस जंगल में बाघ दिखने का प्रमाण भी अधिक है और सैलानियों के लिए अन्य सुविधाएं भी बढ़ गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर्नाटक में दांडेली, नागरहोले, बांदीपुर, इन जंगलों में कैंप आयोजित किया जाता है। पहले मानना था कि इस तरह के कैंप बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन अब अनेक परिवार मिलकर ऐसे उपक्रमों में सहभागी हो रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जंगल पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायों में भी वृद्धि हो गई है और खासकर जंगल से सटे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। जंगल को बचाए रखने में वन विभाग को भी खर्च में मदद हो रही है। परिक्रमा के लिए पुणे से मनोज क्षीरसागर।
In a remarkable achievement under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the tribal communities of the Alluri Sitaram Raju district in Andhra Pradesh have demonstrated exemplary efforts in water conservation. Their work is fostering environmental sustainability and enhancing their livelihoods. We have more on this from our correspondent.
The tribal dominant ASR district in northern Andhra Pradesh, named after the freedom fighter Alluri Sitaram Raju, is making strides in water conservation. The tribal communities there have taken significant steps for sustainable water management under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. In the last financial year alone, the district has constructed over 16,000 water conservation structures, including 13,609 soak pits and about 2,500 farm ponds. The district administration has collaborated with the tribal MGNREGS beneficiaries to develop robust water conservation infrastructure. These initiatives not only secured water resources within the district but also benefited neighboring districts. The implementation of these water conservation projects has had a profound socio-economic impact by providing local employment opportunities and reduced the need for migration in search of work. Additionally, improved water availability has enhanced agriculture productivity, contributing to food security and economic stability in these tribal communities. Their commitment to water conservation under MGNREGS not only secures their water resources but also sets a precedent for sustainable practices nationwide. Sai Sishla for Parikrama, Akashwani, Visakhapatnam.
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में कल यानी 3 अप्रैल से बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के तहत संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और ब्यौरा दे रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता।
छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका अद्भुत जनजाति संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और विविध आदिवासी व्यंजनों के लिए जाना जाता है। बस्तर पंडुम यानी बस्तर उत्सव का आयोजन बस्तर की सी समृद्ध जनजाति कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करने और इसे देश और विदेश के सामने लाने के लिए किया जा रहा है। बस्तर की जनजाति संस्कृति को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस इलाके के कई स्थानीय व्यंजन, वेशभूषाएं और आभूषण अब विलुप्त प्राय होने लगे हैं। इस समृद्ध संस्कृति को बचाने की पहल बस्तर पंडुम के माध्यम से की जा रही है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के तहत जनजाति नृत्य, लोकगीत, जनजाति नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प कला और व्यंजन सहित 7 विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जनजाति नृत्य जैसे गेड़ी, ककसाड़, मांदरी, वहीं लोकगीतों में लेजा, जगार गीत, धनकुल, जनजाति नाटकला की बात करें तो भत्रा नाट्य, वहीं मांदर, मोहरी, चिटकुल, मुंडा बाजा जैसे जनजाति वाद्यंत्र, लुरकी, करधन, धमेल, नांगमोरी जैसी जनजातीय वेशभूषा और आभूषण का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा घड़वा, काष्ठ, ढोकरा, गोदना, माटी कला जैसी शिल्प कलाओं और सल्फी, ताड़ी, लांदा, चापड़ा चटनी, आमट साग, तिखुर जैसे जनजाति व्यंजनों का भी प्रस्तुतिकरण बस्तर पंडुम के मुख्य आकर्षण है। पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया था और अब बस्तर पंडुम का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि बस्तर का इलाका नक्सलवाद के लाल आतंक से मुक्त होकर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
A combined crew of the Indian Navy and 44 personnel drawn from friendly navies and coast guards from Asia and Africa is all set to undergo a 6-week-long deployment to 5 countries in the Indian Ocean region. The exercise will be undertaken on board the offshore patrol vessel INS Sunaina, deployed as Indian Ocean ship Sagar, IOS Sagar. The naval vessel is scheduled to be flagged off from Kharghar by Defence Minister Rajnath Singh on Saturday. Ahead of the vessel's deployment, the naval and coast guard personnel underwent a 2-week-long training at various professional schools under the Southern Naval Command in Kochi. More from our Kochi correspondent.
Over the past few years, the Indian Navy has deepened its partnerships with navies and agencies that operate in Indian Ocean region countries. This is in consonance with India's vision of Sagar, or security and growth for all in the region. The initiatives included joint naval exercises, coordinated patrols, information sharing, humanitarian efforts, capacity building, and other diplomatic engagements. Besides Sagar, another naval initiative is the Africa-India Key Maritime Engagement. Both the initiatives are aimed at consolidating the Indian Navy's stature as the preferred security partner and first responder in the region. For the flag off on Saturday, the crew members of the vessel, apart from India, will include naval personnel from Comoros, Kenya, Madagascar, Maldives, Mauritius, Mozambique, Seychelles, Sri Lanka and Tanzania. IOS Sagar will undertake port of calls at Dar es Salaam, Nacala, Port Louis, Port Victoria and Mali. The crew will also engage in the joint surveillance of the exclusive economic zones of Tanzania, Mozambique, Mauritius and Seychelles. Raj Mohan, Akashwani News, Kochi.
We'll give you the business updates. The benchmark domestic equity indices slumped more than 1% today, mirroring losses in global markets fueled by U.S. President Donald Trump's tariff jitters. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex shed 931 points or 1.22% to close at 75,365. The National Stock Exchange Nifty 50 plummeted 346 points, almost 1.5%, to settle at 22,904. In the global crude market, Brent crude was trading over 4.8% down at $66.74 per barrel, and WTI crude was trading over 5.1% lower at $63.55 per barrel when reports last came in.
और परिक्रमा में अब बात खेलों की. आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा. लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.
Now talking about boxing, at the World Boxing Cup 2025, Indian pugilist Hitesh reached the finals of men's 70kg category at Foz do Iguaçu in Brazil today, ensuring a silver medal for the country. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 4th of April 1914, the Japanese steamship Komagata Maru sailed from Hong Kong to Vancouver in British Columbia, Canada. Komagata Maru incident is infamous as it was one of the several incidents in the early 20th century in which exclusion laws in Canada and the United States were used to exclude immigrants of Asian origin.
Komagata Maru was carrying 376 passengers from Punjab province in British India. On reaching Vancouver on the 23rd of May 1914, they were refused entry into Canada under the Immigration Act of 1910. It was forced to start the return journey of its Indian passengers on the 23rd of July. The ship and passengers arrived at Bajbaj near Calcutta on the 29th of September 1914. But in Calcutta too, they were prevented from disembarking by the British administration.
Upon entry into the harbour, Komagata Maru was stopped by the British gunboat and the passengers were placed under guard. The government of the British Raj saw the men on Komagata Maru as dangerous political agitators. The British government suspected that nationalists were using the incident to instill patriotic feeling. Baba Gurdit Singh, who had originally hired the ship, wanted to walk into Calcutta and meet the governor, as well as to take the Granth Sahib to Gurdwara in Howrah.
This resulted in a heated argument between the police and Gurdit Singh. a rumor spread that Gurdit Singh was being arrested. This resulted in anguish, leading to a fight in which the policeman fired about 177 rounds, killing 26 people and forcing many to flee. Many people were arrested and imprisoned or sent to their villages and kept under village arrest for the duration of the First World War.
In the wake of the incident, prominent Ghadarites including Barkatullah, Taraknath Das and Sohan Singh used the incident as a rallying point to recruit members for the Ghadar movement. In 1952, Prime Minister Jawaharlal Nehru inaugurated a memorial to the Komagata Maru martyrs near the Bajbaj, West Bengal. We salute the great martyrs.
आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी याद कर रहे हैं जिनकी आज जयंती है. सुप्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी की माखनलाल चतुर्वेदी जी की सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे. आपने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया. माखनलाल चतुर्वेदी ने देश प्रेम के ऊपर एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी और शगुन एक उनकी बेहद लोकप्रिय रचना है पुष्प की अभिलाषा जो हम सब ने सुनी है. तो आइए अपने श्रोताओं को भी उनकी ये रचना उन्हीं की आवाज में सुनाते हैं जिसे आकाशवाणी के आर्काइव में सहेज कर रखा गया है.
टेढ़े आड़े पथ पर सीधी बह लेती है धारा, गर्वित चलता मस्त पवन का झोंका प्यारा प्यारा, खेत खेत हरियाली. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेहर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीराने.
Well, listeners, today we are also remembering John Napier. Well, it's definitely for the mathematicians because he was still a mathematician, a physicist and an astronomer. Well, he is best known as the discoverer of logarithms. He also invented the so-called Napier's bones and made common the use of this decimal point in arithmetic and in mathematics. Decimal is very, very, very widely used as we know that.
आज जन्म दिवस है सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अदाकारा परवीन बॉबी का भी. 1970-80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाली परवीन बॉबी की ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रही हैं. 1972 में परवीन के मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई. वहीं उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ 1973 में आई फिल्म चरित्र से. इसके बाद आई चरित्रहीन जिसमें सलीम दुरानी की प्रमुख भूमिका थी. लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया वो फिल्म थी दीवार और इन्हें इस तरह की करीब 10 फिल्मों में कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया.
And she first gained well popularity in the mid 1970s, as you have said, Deewar, Majboor and other films also which were really highest grossing Indian films like Kala Sona, Amar Akbar, Anthony Suhaag and many more. And listeners, we have this beautiful song for you to listen to. Today, we're also remembering Maya Angelou, the memoirist, poet and civil rights activist also. Well, she has published 7 autobiographies and 3 books of essays, several books of poetry also, and is also credited with a list of plays, movies and also television shows, which have spanned over 50 years.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सरफिरोजी और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
Well, listeners, again, our heartfelt condolences to the cinematic icon Manoj Kumar. His films weren't just movies, they were emotions.
Namaskar.
Zindagi kuch bhi nahi teri meri kahani.